ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तक्फुरू फइन्नल्लाहा गनीयुन अन्कुम वला यरदा लिइबादिही कुफ्र व इन तशकुरू यरदहू लकुम वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख्रा थुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. کی آیت نمبر ایک سے لے کر کے چھ تک کا ترجمہ خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل وغیرہ پڑھ کر کے مکمل کیے. کسی کو ان کے اوپر کوئی سوال ہو کلاس کے دوران تو آپ لکھ کر کے پوچھ سکتے ہیں جیسے کہ اس کلاس کی ترتیب ہے. آج انشاءاللہ ہم نے جو آیات تلاوت کری ہیں آیت نمبر 7 سے لے کر کے 10 تک, تو ان کا ترجمہ وغیرہ پڑھنا شروع کریں گے. جو روز کی بات ایک یاد دلانے کی ہے وہ یہ کہ قرآن کی کلاس ہے, تفسیر کی کلاس ہے, تو اس کے اندر کوشش کریں کہ وضو کی حالت میں بیٹھا جائے اور ادب کے ساتھ بیٹھا جائے, یعنی ٹیک لگا کر کے یا پیر پھیلا کر کے اس طریقے سے بے ادبی کے انداز میں نہ بیٹھا جائے. اگر کوئی مجبوری ہے, بیماری ہے, تکلیف ہے تو وہ اور بات ہے, اس کے اندر تو ایکسکیوز بن جاتا ہے وہ, ٹھیک ہے, لیکن ادروائز کوشش کرنی چاہیے کہ ادب کے ساتھ بیٹھیں, تبھی علم نافع حاصل ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ جیسے کل بتایا تھا کہ یہ بچوں کی کلاس نہیں ہے, تو بچوں کو اس کلاس کے اندر ساتھ بٹھانے کی کوشش نہ کریں. 15 سال یا اس سے کم عمر جو لوگ ہیں ان کو شریعت کے اندر بچہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, بالغ ہو یا نہ بالغ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن ذہنی صلاحیت کی بات ہوتی ہے تو اس حساب سے تقریباً 15 سال کی عمر ایسی بنتی ہے جس کے اوپر پھر انسان جو ہے وہ ذرا شعور والا کہلانا شروع ہو جاتا ہے, ماننا بننا شروع ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے, اس کے اوپر کی عمر اگر 16, 17, 18 تو اس میں پھر یعنی ٹھیک ہے, لیکن اس سے کم میں مناسب نہیں ہے. اچھا, ان آیات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, ان اگر تکفروا تم کفر کرو گے, فإن اللہ پس بے شک اللہ غنی ہے, انکم تم سے, ٹھیک ہے, یعنی غنی کہتے ہیں کہ جس کے پاس خود اتنا کچھ ہو کہ اس کو دوسروں کی ضرورت نہ ہو. اسی وجہ سے جو بہت امیر لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی غنی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے اپنے پاس اتنا کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ غنی ہے, ٹھیک ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک وجہ تو یہی کہ ان کے پاس بھی بہت کچھ تھا, بہت مالدار تھے, لیکن غنی ہونے کی وجہ سے ایک اور بھی صفت ایک انسان کے اندر, اچھے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ بھی کرتا ہے, ठीक है, दूसरों के ऊपर, यानी दिल का गनी जिसको कहते हैं कि उसको यानी वो खोल करके खर्च करता है, उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। अल्लाह ताला के लिए जब गनी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो इसका एक मफहूम एक तो ये भी बनता है कि अल्लाह ताला के पास सब कुछ है तो उसको तो किसी की जरूरत नहीं है, दूसरा ये भी कि अल्लाह ताला को किसी की हाजत नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। परवाह का मतलब ये नहीं कि नाउज बिल्ला अल्लाह ताला जो है वो लोगों से एकदम यानी कोई कोई जहन्नुम में जाए, कोई कोई यानी बहुत ही बुरी जिंदगी गुजार रहा हो, अल्लाह ताला को कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल नाउज बिल्ला, जैसे कि फीलिंग लेस है अल्लाह ताला, ठीक है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला को मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला को नफरत होती है, अल्लाह ताला को अच्छा लगता है, अल्लाह ताला को बुरा लगता है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला तो सबसे ज्यादा यानी महसूस करने वाले हैं, लेकिन गनी का मतलब ये कि अगर कोई अल्लाह ताला से मुंह मोड़ता है तो फिर अल्लाह ताला को उसकी जरूरत नहीं है, उसकी परवाह नहीं होती है, ठीक है। तो अगर कोई यानी कुफर करता है, इनकार करता है, तो ये नहीं कि अल्लाह ताला का काम उसके बगैर चल नहीं सकता, ऐसा मामला अल्लाह ताला का नहीं है। वला यरदा लिबाद हिल कुफर, और अल्लाह ताला यानी वो अल्लाह ताला की बात हो रही है ना, जैसे पिछली आयत में इन अल्लाह अल्लाह का जिक्र हो गया, तो अब अल्लाह ताला के बारे में मजीद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो राजी नहीं होता बे इबाद ही अपने बंदों से अल कुफरा कुफर के ऊपर, ठीक है ना, यानी अपने बंदों से कुफर उसको काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। देखिए अल्लाह ताला का जो कलाम है ये अल्लाह ताला को समझने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है, सबसे पहली यानी रिसोर्स है, ठीक है। अल्लाह ताला अपने कलाम में ना अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपना तारुफ कराते हैं। तो अगर हम अपने रब को पहचानना चाहते हैं, अपने रब को समझना चाहते हैं कि हमारा रब कौन है और हमारा रब उसकी क्या अजमत है, क्या शान है, और हमारे रब की क्या चाहत है, और क्या चीज हमारे रब को नाराज करती है, तो उसके लिए अल्लाह के कलाम से ज्यादा अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती, ठीक है। यानी उसके लिए अपनी अकल इस्तेमाल करना, अपनी मंतिक इस्तेमाल करना कि भाई मैं खुद से सोच सोच करके अल्लाह ताला को की बारे में ये सारी तफसीलात समझ जाऊंगा, तो ये एक सही ला हासिल है, ठीक है। अल्लाह के कलाम को छोड़ करके क्यों, जब अल्लाह ताला खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसको छोड़ करके किसी और चीज के ऊपर अपनी तवानाई खर्च करना या अपना वक्त खर्च करना, ये अकल का तकाजा नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला का कलाम और उसकी तफसीर, ये दोनों चीजें अल्लाह ताला को समझने के लिए चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम समझने के लिए हमें तफसीर की जरूरत है, ठीक है ना। उस यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक होता है ना, कुछ लोग जो है वो इसको इस तरह से प्ले करते हैं कि बस कुरान पढ़ो, तुम्हें किसी बुजुर्ग के पास जाने की क्या जरूरत है, तुम्हें किसी आलिम से पूछने की क्या जरूरत है, किसी शेख से ताल्लुक रखने की क्या जरूरत है, बस कुरान पढ़ो और उसको समझो, अल्लाह ताला समझ में आ जाएगा तुम्हारे। नहीं, ये झूठ है, ये धोखा है शैतान का, ठीक है। क्यों, इसलिए कि जो अल्लाह वाले होते हैं हम उनके पास इसीलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला को पहले से ज्यादा समझा होता है, अल्लाह के कलाम से उनका ताल्लुक हमारे मुकाबले में ज्यादा मजबूत होता है, तो इस वजह से हम उनके कलाम को सुनते हैं अल्लाह ही के बारे में मालूम करने के लिए, अल्लाह ही को समझने के लिए, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कुरान पढ़े बंदा और कुछ भी ना ना पढ़े कुछ ना सुने कुछ, ठीक है, नहीं। उनके कल जो अल्लाह वालों का कलाम होता है, उलमा और मशाइख, अल्लाह वाले क्या मुराद, उलमा और मशाइख, ठीक है, तो उनका कलाम भी अल्लाह ताला के कलाम की ही तफसीर होती है, ठीक है। तो उससे भी हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। अच्छा, तो अल्लाह ताला यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए फर्दर क्या कहते हैं कि व इन तशकुरु यरलहु लकुम, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो वो तुमसे यानी यरदहु वो राजी होगा, उससे तुम्हारे शुक्र करने से वो राजी होगा, वो खुश होगा, लकुम तुम्हारे लिए, ठीक है। यानी तुम्हारा शुक्र करना जो है वो तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। किस तरीके से? कि अल्लाह ताला तुम्हारे शुक्र से राजी होगा, खुश होगा। वला तजिरु वाजिरतुन विजरा उखरा। ला तजिरु, वजरा यजिरु का मतलब होता है वजन उठाना, बोझ उठाना, ठीक है। तो ला तजिरु, कोई नहीं उठाएगा बोझ, वाजिरतुन कोई उठाने वाला, यानी कोई उठाने वाला बोझ नहीं उठा सकता, विजरा उखरा किसी दूसरे का बोझ, यानी कोई किसी दूसरे के बोझ को नहीं उठा सकता। क्या मतलब? कि आप किसी को हेल्प ऑफर नहीं कर सकते कि जी आप जो है वो इतना बोझ उठा के जा रहे हैं, तो चले मैं कंधा दे देता हूँ, मैं जो है वो आपकी बोझ को उठा लेता हूँ। किसी बूढ़े को आप देखें, किसी बूढ़ी औरत को देखें, तो क्या आप उसका बोझ नहीं उठा सकते? इस कुरान की आयत का क्या मतलब है? वला तजिर वाजिरा तो विजरा उखरा, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता। तो हमारा दीन क्या दूसरों की मदद करने से हमें मना करता है? जाहिर सी बात है, ये मतलब नहीं है इसका। तो फिर क्या मतलब है भाई इसका? हाँ, तफसीर की तरफ जाना पड़ेगा, है उन लोगों की, उन लोगों से समझना पड़ेगा जिन्होंने अल्लाह के कलाम को हमसे ज्यादा समझा है। वो हमें बताएंगे कि यहाँ पर फिजिकल बोझ की बात नहीं हो रही। हालांकि लफ्ज तो फिजिकल बोझ के लिए भी, मादी बोझ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर उस बोझ की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे बोझ की बात हो रही है गुनाहों के बोझ की, यहाँ पर गुनाहों की बोझ की बात हो रही है। हालांकि यहाँ पे कहीं ना इस्म का लफ्ज है इसके अंदर, इस आयत के अंदर, ना जुल्म का लफ्ज है इस आयत के अंदर, है ना। तो फिर गुनाह, तो गुनाह कहाँ से आ गया? ये तफसीर से आया, है ना। तो कुरान को अगर तर्जुमे से समझ सकते होते तो फिर इस आयत को समझ के दिखा दें, नहीं समझ सकते इस आयत को, ठीक है, तो तफसीर के बगैर कुरान समझ में नहीं आता, ठीक है। तो फरमाया कि कोई किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं शेयर कर सकता, ठीक है। इस्तिग़फ़ार करना किसी की, किसी के लिए, किसी के गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करना, ये गुनाहों का बोझ उठाना नहीं कहलाता। ये तो अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को इस्तेमाल करते हुए दुआ मांगना कि ए अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। जैसे कि जब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों से गुनाह हो गया था, तो जब उन बेटों ने आकर के याकूब अलैहिस्सलाम से माफी मांगी, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? सौफ अस्तग़फिरु लकुम, कि अनकरीब मैं तुम्हारे लिए इस्तिग़फार करूंगा, जब रात को उठूंगा तहज्जुद में, तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से इस्तिग़फार करूंगा, माफी मांगूंगा अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए, ठीक है ना। जिस तरह पिछली क्लासों में बात हुई कि फरिश्ते अल्लाह ताला से ईमान वालों के लिए इस्तिग़फार करते हैं, ठीक है। तो ये इस्तिग़फार करना या अल्लाह ताला की तरफ सिफारिश करना अल्लाह की मर्जी से, ऑफ कोर्स, तो ये सब चीजें जो हैं ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़्रा में शामिल नहीं होती। यहाँ पे बिल्कुल दूसरा मफ़हूम है जो कि आगे इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। इसके बाद फरमाते हैं सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, फिर अपने रब की तरफ तुम्हारा तुम्हारा लौटना है, मरजिउ, ठीक है, तुमको फिर करके जाना है, मरजिउकुम फयुनब्बिउकुम। फिर फा का तर्जुमा यहाँ पर फिर से करेंगे, युनब्बिउकुम, वो तुम्हें बतला देगा, तुम्हें खबर दे देगा। नब्बा युनब्बिउ का मतलब होता है खबर देना। ही विल इन्फॉर्म यू बिमा कुंतुम तामलून, उसके बारे में, बिमा का मतलब उसके बारे में या उसके मुतालिक, जो उसके मुतालिक जो कुंतुम तामलून, तुम अमल किया करते थे, ठीक है। तो अल्लाह ताला की तरफ लौट के जाना है सबने, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या हो सकता है अगले लम्हे, किसी को क्या पता कि किस लम्हे इसने चले जाना है इस दुनिया से, और फिर अल्लाह ताला के सामने पेश हो जाना है। तो उस वक्त फिर सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या करते थे। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो अलीम है। अलीम ये मुबालगे का सीगा है। आलिम, आलिम कहते हैं जानने वाले को, और अलीम जो सब कुछ जानता है। आलिम सब कुछ तो नहीं जानता, हाँ दूसरे लोगों के मुकाबले में ज्यादा जानता है तो उसको आलिम कह देते हैं, लेकिन अलीम सब कुछ जानने वाला, हत्ता के आवाज पैदा हो रही हो या ना हो रही हो, अल्लाह ताला उसके दिल के हाल को जानता है, चाहे वो कुछ मुंह से बोले ना बोले, है ना। अल्लाह ताला उसकी आंखों की खयानत को जानता है। इंसान आंखों से छुप छुप करके किसी को देखे, दूसरों को नहीं पता चलेगा, अल्लाह ताला को उसका भी पता चल जाएगा। तो अल्लाह ताला तो बेशक अलीम है, बेजात सुदूर, दिलों के भेद जानने वाले हैं। जात सुदूर का मतलब जो दिलों की बात है। सदर का जो लफ्ज है ये वैसे तो सीने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सीने में इंसान का कल्ब होता है, सबसे अहम चीज कल्ब होता है। तो इस वजह से कभी कल्ब का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है और कभी उसके लिए सिर्फ सदर का लफ्ज भी इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि सदर में सबसे अहम चीज इंसान का कल्ब ही होता है। तो अल्लाह ताला तो कुलूब के अहवाल का मुकम्मल इल्म रखने वाला है। वइज़ा मस्सल इंसाना ज़ुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि, और जब मस्सल इंसाना, इज़ा का तर्जुमा जब से करते हैं, वाव का तर्जुमा और से, ठीक है ना। तो और जब मस्सा, मस्सा का मतलब जैसे उर्दू में भी कहते हैं ना, मस करना, छूना। मस्सल इंसाना इंसान को छूता है, ज़ुर्रुन, ज़ुर्रुन का मतलब कोई ज़रर, कोई सख्ती, कोई तकलीफ। तो जब इंसान को कोई तकलीफ छूती है, दुआ रब्बहु, वो दुआ करता है अपने रब से, अपने रब की तरफ रुजू करता है, अपने रब से मांगता है, मुनीबन इलैहि, उसकी तरफ मुनीब होते हुए। मुनीब किसको कहते हैं? इनाबत करने वाले को। उम्मीद है कि आप लोग कुछ पेंसिल पेन वगैरह साथ रखते होंगे, या तो किताब पे लिख लेते होंगे, या अपनी किसी नोटबुक में कुछ ना कुछ तो बंदे को लिख लेना चाहिए, स्टूडेंट को। लिखने से ना फिर इंसान के दिल के अंदर भी कुछ ना कुछ लिख ही जाता है, कागज पर लिखने से एक फायदा होता है, और फिर उसको रिवाइज करना भी आसान हो जाता है। तो ये जो टर्म्स कुछ आपको बताई जा रही होती हैं क्लास में, तो उसको अच्छा है कि लिख लिया जाए। इससे हम अल्लाह ताला को ना अपनी संजीदगी भी शो करते हैं कि हम कितना संजीदा हैं बात को समझने के बारे में, कुरान को समझने के बारे में। ऐसे ही बस बैठ गए और बस जल्दी जल्दी करके सुन करके उठ गए तो ठीक है, ना बैठने से ये बेहतर है, लेकिन इससे एक फीलिंग होती है कि जी ये बस ऐसे ही खाना पूरी कर रहे हैं, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, और संजीदगी कोई नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो लिखने की आदत बहुत अच्छी आदत है। कुछ हमारे बुजुर्ग तो कलम और कागज के बगैर अपनी मजलिस में बैठने ही नहीं देते थे। तो दुआ रब्बहु मुनीबन इलैहि, मुनीब कहते हैं इनाबत करने वाला, रुजू करने वाला अल्लाह की तरफ, ठीक है। तो ये लोग जब इनको मुश्किल पड़ती है ना, तो ये अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं। सुम्मा इज़ा खव्वलहु निअमतम मिन्हु, फिर उसके बाद सुम्मा, फिर इज़ा खव्वलहु, जब वो दे देता है, बख्श देता है उसको निअमा, यानी उसकी मुश्किल को दूर कर देता है और इसके बदले में उसको कोई नेमत दे देता है, ठीक है, अपनी तरफ से, मिनहू मतलब अपनी तरफ से कोई नेमत दे देता है। नसिया, भूल जाता है वो, निसियान भूलना, नसिया वो भूल जाता है, मा काना यद्रू इलैही, उसको जिसको के इसने पुकारा था वो भूल जाता है उसे, मिन कबलू, जिसको इसने इससे पहले पुकारा था, यानी अल्लाह को इंसान नेमतों में भूल जाता है। यहां पर इंसान से कौन मुराद? सारे इंसान नहीं, क्योंकि नबी ऐसा नहीं करते, वली ऐसा नहीं करते, सालिहीन ऐसा नहीं करते, बल्कि कैसे इंसान जो इन जनरल गाफिल इंसान होते हैं, उनका क्या तर्ज अमल होता है? मुसीबत पड़ती है तो अल्लाह याद आता है, और जैसे ही मुसीबत खत्म होती है वो अल्लाह को भूल जाते हैं। नसिया मा काना यदउ इलैही, उसको के जिसके लिए ये पुकार रहा था, ठीक है, जिसके लिए पुकार रहा था, यानी जिस मुसीबत, यहाँ पे क्या लफ्जी तर्जुमा तो बनता है कि जिस मुसीबत के लिए उन्होंने अल्लाह को पुकारा था वो उस मुसीबत को भूल जाते हैं, यानी मुसीबत के दिनों को भूल जाते हैं और नेमतों के अंदर गर्क हो जाते हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है? कि फिर अल्लाह की तरफ रुजू करना ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो मुसीबत भी जो है ना, ये कुछ लोगों के लिए मुसीबत जो है ये अल्लाह ताला की नेमत होती है, इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि वो तबीयतें कुछ ऐसी होती हैं कि जहां आसानी हो उधर अल्लाह को भूल गए और जहां तंगी हो उधर अल्लाह याद आ गया। तो भाई अल्लाह याद आना तो इंसान के लिए फायदा मंद है, इस दुनिया की जिंदगी के लिए भी और हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए। तो फिर ये मुसीबत इसके लिए अच्छी हो गई ना। हम कितने लोगों को जानते हैं कि उनको बुलाते रहो दीन की तरह, उनसे बात करते रहो, कोशिश करते रहो, नो लिफ्ट, नो लिफ्ट, बिल्कुल कोई लिफ्ट ही नहीं कराते। और जहां जो है जॉब जाने लगती है ना, जब जब नजर आता है कि अच्छा अब जॉब चली जाएगी, तो उधर फिर हजरत याद आते हैं, फिर उनको जो है ना वो महफिल जिक्र याद आती है, फिर उनको जो है वो क्लास याद आती है, फिर उनको राबता करना याद आता है ना। फिर उसके बाद जो है वो लाइन पे आना शुरू कर देते हैं, कराची की लैंग्वेज में कहते हैं लाइन पे आ गया बंदा, है ना। तो भाई ये मुसीबत तो उसके लिए खैर हो गई ना फिर, वरना तो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अच्छा, जब बात मानने के लिए वो तैयार नहीं थे तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। हमें ऐसे ही हम अच्छा गुमान करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, चलो हमारी बात नहीं मान रहा, नहीं आ रहा यहाँ पे, तो चलो फिर भी चलो सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बाद में जब मुसीबत पड़ती है तब जब आते हैं ना, तब पता चलता है कि जो उनके बजाहिर खैर के दिन थे ना, उन खैर के दिनों के अंदर वो अपने अपने आप को कितना अजियत पहुंचा रहे थे, कितना अपने आप को मुश्किलात में मुब्तला कर रहे थे। ऐसे कोई थोड़ी कोई इस तरीके का एटीट्यूड रख करके, जो नो लिफ्ट एटीट्यूड होता है, वो जिंदगी में कोई खुश कोई थोड़ी रह रहा होता है, वो कोई आसाइशें कोई थोड़ी जमा कर रहा होता है, वो मुसीबतें ही अपने ऊपर लाद रहा होता है। और फिर बिल आखिर फिर किसी दिन उसको कोई खबर मिल जाती है, तो उसके बाद फिर ना वो परेशान हो जाता है वैसा बंदा, फिर उसके बाद फिर उसको अल्लाह याद आता है, फिर उसके बाद फिर अल्लाह वाले और अल्लाह वालों का काम याद आता है कि हाँ भी दीन वालों की तरफ चले जाओ। ठीक है, तो बेहतर क्या ये नहीं है कि हम जब हमारे ऊपर अल्लाह की नेमतें हैं हम उसी वक्त अल्लाह को याद करते हैं, ये ना हो कि जी कल को मुसीबत पड़ने पर अल्लाह याद आया और फिर वो हम उन्हीं लोगों में से शामिल हो जाएंगे जो कि जिनका जिक्र यहाँ कुरान के अंदर है। तो नसिया मा काना यबरू इलैहि मिन कबलु व जअला लिल्लाहि अंदादन, और उन्होंने ठहराए अल्लाह के लिए अंदादन। अंदादन का तर्जुमा जो है वो बराबर, ठीक है, शरीक और बराबर से एक, तो लियुज़िल्ल अन सबीलिही, ताकि वो औरों यानी ताकि वो बहकाए, ताकि बहकाए उसकी राह से। ठीक है, यानी ये जो शरीक ठहरा लिया ना उन्होंने अल्लाह ताला के साथ, तो वो उनको अल्लाह की राह से फिर बहका देते हैं। ठीक है, यानी शरीक ठहराने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि वो ऐसे लोगों की अतात करना शुरू कर देते हैं कि जिनकी अतात करना अल्लाह ताला ने मना किया है। ठीक है, तो अतात तो अल्लाह ताला के लिए है, लेकिन जब अतात के अंदर वो गैरुल्लाह को शरीक कर लेते हैं, ठीक है, यानी किसी ऐसे फर्द को, किसी ऐसी शख्सियत को जो के अल्लाह के खिलाफ इंसान को लेके जाता है, जब ऐसी किसी शख्सियत को अल्लाह की अताअत में शरीक कर लेता है बंदा, तो फिर वो शख्सियत, वो फर्द क्या करता है, वो उसको अल्लाह के रास्ते से हटा देता है। जैसे कि कल की क्लास में ये बात हुई थी कि अताअत जो है वो सिर्फ उस वक्त किसी की जायज है कि जब वो या तो अल्लाह की तरफ बढ़ाने में फायदा फायदा पहुंचाए, ठीक है, या ये कि वो अल्लाह ताला से दूर करने का सबब ना बने, तब फिर अताज जायज है, मुबाह है, परमिसिबल है, वरना अताज जायज नहीं है। किसी ऐसे की अताज करेंगे जो अल्लाह ताला से दूर करने का सबब बन रहा है ना, तो फिर ये अल्लाह ताला की अताज में उसको शरीक करना ठहराएगा। ठीक है, फर्क इसके अंदर समझना जरूरी है, क्योंकि अताअत हम अपने असाध्या की भी करते हैं अपने वालिदैन की भी करते हैं, अपने मशाइख की भी करते हैं, नेक लोगों की भी करते हैं, जिसको भी अमीर बना दिया गया उसकी भी अतात करते हैं। तो ये सारी अतातें जो हैं ये चूंकि अल्लाह के हुक्म की वजह से हम करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने कुरान के अंदर हुक्म फरमाया है ना, अतीउल्लाह व अतीउर्रसूली व उलिल अम्र मिनकुम, तुम्हारे दरमियान जो अथॉरिटी वाले लोग हैं उनकी भी अतात करो तुम, और फत्तबि सबीला मन अनाब इलैया, तुम उन लोगों की इत्तबा करो जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले हैं। तो इत्तबा के अंदर तो अतात भी शामिल हो जाती है। तो ये सारी अतातें जो हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से इंसान करता है, तो ये अल्लाह की अतात में शिर्क नहीं कहलाएगा। अल्लाह की अतात में शिर्क ऐसे शख्स की अतात करना कहलाएगा कि जो कि अल्लाह ताला के रास्ते से दूर करने वाला हो, यानी हराम का हुक्म देता हो, उसकी अतात करना यहाँ पर मुराद होगा कि इन लोगों ने ना अल्लाह ताला के साथ बराबर ठहराए, ताकि और फिर हुआ क्या, ताकि का मतलब यह है कि उन्होंने ठहराए इसलिए नहीं थे कि वो अल्लाह के रास्ते से दूर कर दें, ठीक है, यानी इनका इरादा नहीं था कि अल्लाह के रास्ते से दूर हो जाए, लेकिन चूंकि इन्होंने किसी ऐसे शख्स की अतात शुरू कर दी ना जो कि नेक नहीं था, मुत्तकी परहेजगार नहीं था, बल्कि गुमराह करने वाला शख्स था, इन्होंने उसकी अतात शुरू कर दी, तो अब ऑटोमेटिकली ये अल्लाह के रास्ते से गुमराह होंगे। ये नहीं हो सकता कि वो किसी ऐसे शख्स की अतात करें और ये अल्लाह के रास्ते पर कायम रह सके, कायम नहीं रह सकेंगे, लाजमन ये अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो जाएंगे। ठीक है, कुल आप कह दीजिए इनसे, तमत्ता बिकुफ्रिका, तुम अपने कुफर से मजे कर लो, मजे उठा लो, तुम फायदे, तमत्ता का मतलब होता है जैसे मता कहते हैं ना दुनिया के फायदे को, मताउ दुनिया कलील, दुनिया का फायदा, दुनिया का सामान, ये तो थोड़ा सा है साजो सामान वगैरह, तो तुम ना अपने कुफर के से जो है ना यानी यानी फायदा उठा लो, कलीलन थोड़ा सा फायदा, क्योंकि जितनी तुम्हारी इस दुनिया की जिंदगी है उससे ज्यादा तो तुम फायदा नहीं उठा सकते, और फिर इस दुनिया की जिंदगी के अंदर भी तुम हर वक्त तो फायदा नहीं उठा सकते, है ना, बहुत से ऐसे मौके आएंगे कि जिसके अंदर तुम एंजॉय नहीं कर सकते, सोना भी तो है ना, सोने के दौरान तुम इन हराम चीजों से कैसे एंजॉय करोगे, जब बीमार पड़ोगे तो तुम इन हराम चीजों से कैसे एंजॉय करोगे, जब कोई और जिम्मेदारी का काम कर रहे होगे, जॉब कर रहे होगे या कोई और अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे होगे, तो तुम इन गाने बजाने और हराम चीजों से कैसे एंजॉय करोगे, तो दुनिया की जिंदगी के अंदर भी तुम बहुत थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो खाली, और फिर दुनिया की जिंदगी खुद ही थोड़ी सी है, तो जब ये खत्म हो गई तुम्हारी सारी एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी अपनी नाफरमानी के साथ जो तुम करना चाह रहे थे। इन्नका मिन अस्हाबिन नार, बेशक तुम तो आग वालों में सो, ठीक है, जिसने जअला लिल्लाही अंदादन, अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराया ना, तो ये तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तुम तो जहन्नुम वालों में से हो। फिर अल्लाह ताला इन काफिरों से ही या इवन जनरल खिताब करते हुए फरमाते हैं, अम मन हुआ कानितुन, क्या मन जो हुआ कानितुन वो कानितुन है, कानितुन का मतलब अताद गुजार है, बंदगी में लगा हुआ है अल्लाह ताला की, इबादतों के अंदर लगा हुआ है, कानितुन ऐसे शख्स को कहते हैं, आना अल्लैली, रात के लम्हों में, रात के वक्त में, आना अल्लैली, साजिदन व काइमन, सजदे करता हुआ और क्याम करता हुआ, यानी नमाज में जो क्याम करते हैं जिसमें तिलावत की जाती है, तो क्या वो शख्स जो कि रात के पहरों में, रात के औकात में सजदे कर रहा है और क्याम कर रहा है, क्या वो यहदरुल आखिरता, और उसकी हालत क्या है कि वो आखिरत का खतरा भी रखता है, वह यरजू रहमत रब्बी, और अल्लाह ताला अपने रब की रहमत की उम्मीद भी रखता है, अल मुमिनु बैन रजा वल खौफ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन तो उम्मीद और खौफ के दरमियान जिंदगी गुजारता है, क्या मतलब कि वो अल्लाह ताला से उम्मीद में भी रहता है जब कभी उसके ऊपर कोई तकालीफ आती है, परेशानियां आती हैं, तो उसको अपने रब से उम्मीद होती है कि मेरा रब मुझे इन मुश्किलात से निकालने वाला है। ठीक है, और खौफ के अंदर क्यों रहता है? क्योंकि उसको इस बात की हर वक्त फिक्र रहती है कि मेरे पास जो ईमान है, कहीं ये ईमान मुझसे छिन ना जाए, कहीं मैं कोई ऐसा काम ना कर जाऊं कि अल्लाह ताला को मैं नाराज कर बैठूं। वो इस खौफ के साथ रहता है हर वक्त, उसको जिंदगी में खौफ रहता है। लेकिन ये खौफ उसका इतना ज्यादा क्यों नहीं बढ़ पाता कि इसको मायूस कर दे, इसको डिप्रेस कर दे? क्यों नहीं बढ़ पाता इतना खौफ उसका? इसलिए कि उसको अपने रब से उम्मीद भी लगी रहती। तो बैनल खौफ वल रजा या बैनल रजा वल खौफ का मतलब क्या कि ना तो उसकी उम्मीद हद से आगे बढ़ जाती है कि वो आमाल से गाफिल हो जाए, अल्लाह ताला की खशियत उसके अंदर से खत्म हो जाए, ना तो उम्मीद इतनी ज्यादा लगती है उसको, और ना जो है उसका खौफ इतना ज्यादा बढ़ता है कि वो मायूसी का शिकार हो जाए। तो दोनों दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती हैं इसके। तो यहां पर भी अल्लाह ताला ना देखने दोनों का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो रातों को इबादतें करता है ना, यह हज़रुल आखिरा, आखिरत का इसको खतरा भी लगा रहता है। ठीक है ना, हज़रा या हज़रू, खतरा भी लगा रहता है उसको, एक एक परवा फिक्र लगी रहती है उसको। वो यरजू रहमत रब्बी, और अपने रब की रहमत की तरफ इसको उम्मीद भी लगी रहती है। ये कैफियत होती है ईमान वाले की। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल करके फिर आगे फरमाते हैं, कुल कह दीजिए इनसे, हल यस्तवी यालमूना वल्लजीना ला यालमून, कह दीजिए कि क्या मुस्तवी हो सकते हैं? मुस्तवी का मतलब बराबर, लेवल, एक लेवल पर। अल्लज़ीना यालमूना, वो लोग जो के इल्म रखने वाले हैं, जो समझ रखने वाले हैं, इल्म रखने वाले। वल्लज़ीना ला यालमून, और वो लोग जो के इल्म रखने वाले नहीं हैं, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज बराबर नहीं हो सकते ना। कॉमन सेंस की बात है, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है कि इल्म रखने वाला और जाहिल हरगिज हरगिज बराबर नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला ना हमारी इस कॉमन सेंस को इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसको जो है वो ट्रिगर कर रहे हैं। सोचो जरा तुम, क्या ऐसा हो सकता है? नबी अलैहि सलाम से फरमा रहे हैं कि आप लोगों से कह दीजिए, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? इन्नमा यतज़क्करु उलुल अल्बाब, सिवाय इसके नहीं कि ये समझने वाले उलुल अल्बाब हैं, यानी हकीकत में इस बात की गहराई को समझने वाले कि इल्म वाले और गैर इल्म वाले ये बराबर नहीं हो सकते, ये सिर्फ लुब वाले बात समझ सकते हैं। ठीक है, यानी लुब वाले कौन होते हैं? लुब कहते हैं एडवांस्ड फॉर्म ऑफ इंटेलेक्ट, अकल की एक, यानी ऐसी ऐसी हालत अकल की कि जो के अपने जिंदगी के असल मकसद को समझने वाली, जिस जो अकल जो है अल्लाह तक पहुंचाने वाली हो, अल्लाह का रास्ता, उस रास्ते पर चलाने वाली जो अकल होती है ना, उसको लुब कहते हैं। हर अकल को लुब नहीं कहते, ठीक है, वरना दुनिया में बड़े बड़े अकलमंद हो गए, बड़े बड़े आइंस्टाइन गुजरे हैं, आज भी मौजूद हैं सारे, ठीक है, लेकिन उनकी अकलों ने उनको रब तक नहीं पहुंचाया, तो वो उलुल अलबाब नहीं। और एक आम सा किसान, एक आम सा मोची, जूते गांठने वाला, सड़क की सफाई करने वाला, बर्तन धोने वाली, घर के अंदर कामकाज करने वाली, अगर उसकी अकल उसको रब तक पहुंचाती है, वो उलुल अलबाब में से है। दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन उसके नीचे, उसके उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। इस आम इंसान के सामने जो कि अपने रब को पहचानता है और रब का जो तकाजा है इससे उसको पूरा करने की कोशिश करता है, ये उलुल अलबाब में से। तो इन लोगों को ये बात समझ में आती है, यही लोग उलमा की कदर भी करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अल्लज़ीन यालमून वल्लज़ीन ला यालमून, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। तो जो उलमा की नाकदरी करते हैं ना, क्या पता चला इस आयत से कि जो उलमा की नाकदरी करते हैं वो लुब वाले नहीं हो सकते। बेशक वो अपने तौर पर इबादतें कर रहे हो, मस्जिदें जा रहे हो, सदके खैरात भी कर रहे हो, लेकिन इस फर्क को रेकग्नाइज नहीं करते हैं, तो वो उलुल अलबाब में शामिल नहीं होंगे। या इबादिल दजीना, कह दीजिए कि ए बंदों, इबाद अब्द की जमा, ए बंदों, अल्लदीना आमनु, वो लोग जो ईमान लेकर के आए हो। क्या मतलब ईमान लेकर के आए हो? जिन्होंने इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब किया है, अपनी जुबान से नबी अलैहिस्सलाम की हर बात को सच्चा तस्लीम करने का इकरार किया है और दिल से उसकी तस्दीक करी है, ये होता है ईमान वाला। तो जो लोग ईमान लेकर के आए हैं, इत्तकू रब्बकुम, अब तुम अपने रब से तकवा भी अख्तियार करो, यानी अपने रब के अहकाम के ऊपर तुम अमल भी करो। ठीक है, मुनीब के मीनिंग आपको बताती है कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाला। क्या इमामों की इत्तेबा आयन से खत्म होता है? ये इसी जुमरे में आता है, इमामों की इत्तेबा। जिस मुझे याद नहीं आपने कभी सवाल किया था, तो मतलब फिर से अगर बता दें तो या इबादिल्लज़ीना आमनू इत्तकू रब्बकुम, तुम अल्लाह ताला के हुक्मों पे अब अमल भी करो, ईमान लाने वाला काम तो तुम कर चुके हो। ठीक है, लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िह दुनिया हसना, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जो अहसनू, जिन्होंने नेकी करी। ठीक है, अहसनू का तर्जुमा यहाँ पर होगा जिन्होंने जिन्होंने नेकी का काम किया। ठीक है, ये नहीं किसी के ऊपर एहसान किया, बल्कि जिन्होंने इन जनरल नेकी का काम किया। फी हाजिह दुनिया, इस दुनिया के अंदर, हसनातुन, तो उनके लिए हसना है। लिल्लदीना हसन, लिल यानी उनके उनके लिए जो है वो क्या है, हसना है, नेकी भलाई है, यानी भलाई का अंजाम भलाई से होगा। ठीक है, और ये जो भलाई का अंजाम भलाई से होता है ना, ये किसी बंदे ने नहीं लौटाना होता, बल्कि ये परवरदिगार ने लौटाना होता है भलाई का अंजाम भलाई से। ठीक है, तो हमें भी अपनी भलाई का जो जो बदला है ना, वो बंदों से एक्सपेक्ट करने की बजाय अपने परवरदिगार से उसकी उम्मीद लगानी। ठीक है ना, खशियत के साथ, ये नहीं कि अल्लाह ताला के सामने नाउज बिल्ला, जैसे इंसान जो है वो किसी का गरेबान पकड़ लेता है ना कि मैंने किया था अब लौटाओ तुम, कैसे तुम नहीं लौटाते, ये एटीट्यूड परवरदिगार के साथ नहीं चल सकता। ठीक है, हाँ, खशियत के साथ, अल्लाह ताला के साथ बेहतरीन गुमान रखना कि मैंने अल्लाह के लिए नेकी करी थी, अल्लाह ताला मुझे उस नेकी का बदला लौटाएंगे, यकीनन लौटाएंगे, खशियत की कैफियत के साथ ये गुमान रखना, ये है अल्लाह ताला की बारगाह का अदब। ठीक है, अल्लाह ताला के साथ ऐसे नेकी की के यानी बेहतरीन बदले की तवक्को ऐसे रखनी होती है। ठीक है, अल्लाह ताला हमारे जैसे कोई इंसान की थोड़ी है कि जिस तरह हम एक दूसरे से डिमांड करते हैं कि क्यों नहीं किया तुमने मेरे साथ अच्छा सुलूक, हालांकि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक किया था। तो अल्लाह ताला ने वादा किया है कुरान के अंदर, और इस कुरान के वादे के ऊपर मोमिन के लिए लाजमी है कि वो यकीन रखे ना। वो अर्दुल्लाह वासिया, अर्दुल्लाह अर्द जमीन को कहते हैं, तो अल्लाह की जमीन वासिया वसी है, कुशादा है। इन्नमा युवफ्फा सबिरून अजरहुम बगैर हिसाब, सिवाय इसके नहीं, सिवाय इसके नहीं, इन्नमा का तर्जुमा सिवाय इसके नहीं से करते हैं, इसका मतलब यह है कि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कोई और चीज मुमकिन ही नहीं है इसके अलावा। किसके अलावा? युवफ्फा सबिरून, वो बदला देता है, वफा करता है सब्र करने वालों के साथ, अजरहुम उनका अजर बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के, बगैर हिसाब के का मतलब जैसे उर्दू में हम कहते हैं बिला हिसाब अजर देता है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि नहीं किसी ने सबर किया हो और अल्लाह ताला उसको बिला हिसाब अजर नहीं देगा, नहीं ये नहीं हो सकता। इन्नमा कलमाए हसर, लाजमन है कि ऐसा हो, जो सबर करने वाले हैं उनको अल्लाह ताला बिना हिसाब यानी दूसरों के मुकाबले में कई कई गुना ज्यादा अजर देंगे। ठीक है। अब ये तफसीर तलब बात है, इसका मतलब क्या है, तो इंशाल्लाह आगे मगरिब मसाइल में हजरत ने लिखा भी है और वहां पे इस बारे में तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम खुलासा तफसील शुरू कर लेते हैं, किसी को कोई सवाल हो तो पूछना, और जिन्होंने ये सवाल किया था तो प्लीज अगर आप फिर से इसको एक्सप्लेन कर दें कि आप क्या पूछना चाह रहे थे। खुलासा तफसील में हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ए लोगों, तुमने कुफ्र और शिर्क का बुतलान सुन लिया, ठीक है, पिछली आयतों के अंदर कुफ्र और शिर्क का बुतलान जो है वो मुख्तलिफ दलाइल के जरिए से अल्लाह ताला ने किया था ना, सूरज और चांद का भी तस्करा किया और इंसान की तख्लीक का भी तस्करा किया वगैरह। इसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अगर तुम कुफ्र करोगे जिसमें शिर्क भी दाखिल है, ठीक है ना, यानी कुफ्र और शिर्क जो है ना ये दोनों एक ही चीज है। कुछ लोग समझते हैं कि ये अलग अलग है, या उलमा ने कुछ समझाया लेकिन वो सही तरह से समझ नहीं सके इस बात को, तो समझते हैं कि ये फलाने लोग कुफर करते हैं शिर्क नहीं करते, और फलाने लोग शिर्क करते हैं कुफर नहीं करते। नहीं, कुफर और शिर्क दोनों एक जगह जमा होता है, एक ही चीज के अंदर कुफर और शिर्क जमा है। हाँ, अब बजाहिर आपको उसमें शिर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर थोड़ी और तफसीर के अंदर चले जाएं, गहराई में चले जाएं, तो फिर शिर्क होता है उसके अंदर भी, ठीक है। तो कुफर जो है ना वो बगैर शिर्क के नहीं हो सकता, तो बात की गहराई की जरूरत होती है समझने के लिए। तो फरमाया कि कुफर करोगे जिसमें शिर्क भी दाखिल है, जैसे कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत फरमा रहे हैं, तो भाई आगे पीछे कौन इसके ऊपर फिर बहस कर सकता है। तो अल्लाह ताला को कोई जरर नहीं, तुम अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो तुम्हारा और तुम्हारी इबादत का हाजतमंद नहीं है। गनी अनकुम, है ना, वो हाजतमंद नहीं है तुम्हारी इबादत का, कि तुम्हारे इबादत तो तौहीद इख्तियार ना करने से कुछ उसको जरर पहुंचे, कोई नुकसान हो अल्लाह ताला को नाउज बिल्ला तुम्हारे कुफर की वजह से। और ये बात जरूर है कि वो अपने बंदों के लिए कुफर को पसंद नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला गनी अनकुम तो अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं, तुम कुफर करो तो भी तुम ठीक रहोगे, और अगर तुम नेक बनो तो भी तुम ठीक रहोगे, अल्लाह ताला को क्या परवाह भाई तुम्हारी। नहीं, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कुफर, और अल्लाह ताला को नापसंद होना ये कोई मामूली बात नहीं है, कि जैसे हमारे पड़ोसी को कोई बात पसंद नहीं आई तो हम कहते हैं यार कोई बात नहीं, हु केयर्स, है अल्लाह ताला अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला कोई ऐसे आम इंसान नहीं है ना जिनके बारे में हम हु केयर्स का एटीट्यूड रखें। क्योंकि कुफर से बंदों को जरर पहुंचता है, क्या मतलब, अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निजाम ऐसा बना दिया कि जैसे आग से बंदा जलता है ना, आप आग में हाथ डालें और कह गए क्यों क्यों जला रही है ये आग मुझे, मेरे हाथ को क्यों जला रही है, नहीं जलाना चाहिए, तो इसका क्या जवाब होगा, भाई अल्लाह ताला ने आग के अंदर ये सलाहियत रख दी है कि जलाएगी, ठंडा नहीं करेगी तुम्हारे हाथ को अगर तुम आग के अंदर हाथ डालोगे। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने कुफर का जो अमल है, यानी दिल का जो अमल कुफर कहलाता है, इनकारी, इसके अंदर ये अल्लाह ताला ने रख दिया है, इसकी कदर बना दी है कि इसने बंदों को नुकसान पहुंचाना है, चाहे किसी को नजर आए ना आए, समझ में आए ना आए। जैसे हम कहते हैं ना, बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली इस तरह से अभी भी सोचते हैं कि जी ये यूरोप वाले इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, और अमेरिका वाले और ऑस्ट्रेलिया वाले, खुसूसन पाकिस्तान में जब लाइट जाती है तो और भी ज्यादा यूरोप अमरीका याद आता है ना, वहां पे जब बिजली जब जब नलकों में पानी नहीं आता तो फिर वो हम इतनी मुसीबत की जिंदगी और वो इतनी अच्छी जिंदगी, या घर के अंदर हालात खराब होते हैं, मुस्तकिल की एक टेंशन चल रही होती है, लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, तो अगला बंदा जिसके घर में हम समझते हैं कि कुछ नहीं चल रहा, चल रहा है नहीं चल रहा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हो रहा है वहां पर, लेकिन ऊपर ऊपर से नजर आता है वो तो बड़े अच्छे रह रहे हैं, हमारे घर में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर वो कुफर कर रहा है अल्लाह ताला की नेमतों का, कुफरानी नेमत कर रहा है, तो उसको भी जरर पहुंच रहा है, चाहे हमें दिखाई देता हो या ना दिखाई देता हो। ये हो नहीं सकता कि कोई आग जलाए और उससे ठंडक पैदा होना शुरू हो जाए, कोई कुफर करे और उससे सुकून पैदा होना शुरू हो जाए, नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो फरमाते हैं कि और ये बात जरूर है कि वो अपने बंदों के लिए कुफर पसंद नहीं करता, क्योंकि कुफर से बंदों को जरर पहुंचता है, और अल्लाह ताला नहीं चाहते कि उनके बंदों को जरर पहुंचे। और अगर तुम शुक्र करोगे, ठीक है, वह इन तश्कुरू था ना, वह इन तश्कुरू यरज़ुकुम लकुम, तो वो कहते हैं कि तुम शुक्र करोगे, अब तफसीरन कह रहे हैं जिसकी फर्द आजम ईमान है। फर्द आजम, फर्द का मतलब होता है मेंबर, क्या मतलब कि जो कुफर सॉरी जो शुक्र कहलाती है ना जो चीज, तो शुक्र की के इंग्रेडिएंट्स में से इंग्रेडिएंट्स तो उम्मीद है सब समझते होंगे, क्या कहेंगे उर्दू में उसको, उसके जो लवाजमात जो उसके अंदर मौजूद होती हैं चीजें हैं, तो उसके लवाजमात में से, उसके इंग्रेडिएंट्स में से सबसे अहम, हाँ अज्जा जदा को पता, उसके अज्जा में से सबसे अहम जुज ईमान है। क्या मतलब? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई काफिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाला कहला सके, शुक्र अदा करने वाला बन सके। बेशक वो काफिर अरबी में अल्हम्दुलिल्लाह बोले या अंग्रेजी के अंदर थैंक्स टू अल्लाह बोले, कुछ भी बोले या कुछ भी करे, अगर वो नबी अलैहिस्सलाम का इनकार कर रहा है तो वो हरगिज हरगिज शुक्र करने वाला नहीं बन सकता। बगैर ईमान के देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र। ठीक है, तो ये फरमा रहे हैं कि जिसकी फर्द आजम ईमान है तो उसको कोई नफा नहीं, मगर चूंकि अल्लाह को कोई नफा नहीं तुम्हारे शुक्र करने से, मगर चूंकि तुम्हारा नफा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने शुक्र के अंदर खैर रख दी है इंसानों के लिए, नफा रख दिया इंसानों के लिए, तो चूंकि तुम्हारा नफा है इसलिए वो उसको तुम्हारे लिए पसंद करता है। ठीक है ना, जैसे एक माँ, अब अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज्यादा रहीम है ना, लेकिन समझाने के लिए अल्लाह ताला ने अपने रहम की एक छोटी सी मिसाल माँ की शक्ल में रखी है कि बच्चे को जो चीजें फायदा पहुंचा रही होती हैं माँ उन चीजों को बच्चे के लिए पसंद करती है, और जिन चीजों से बच्चे को नुकसान हो रहा होता है माँ उन चीजों को नापसंद करती है। किस वजह से? बच्चे से मोहब्बत करती है ना। तो अल्लाह ताला तो अपने बंदों से 70 गुना माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और चूंकि हमारे यहाँ कायदा मुकर्रर है, यानी अल्लाह के यहाँ ये कायदा भी मुकर्रर है कि कोई किसी का बोझ गुनाह का नहीं उठाता। ठीक है, पहले बात हो चुकी, इसलिए कुफर करके यूं भी ना समझना कि हमारा कुफर दूसरे के नाम अमाल में किसी वजह से दर्ज हो जाएगा और हम बरी हो जाएंगे उससे, ख्वा इस वजह से कि हम दूसरों के मुतबे हैं, कि जैसे किसी बड़े की इतबा करी और उस इतबा के अंदर जो है वो कुफर का काम किया, तो ये समझ रहे हैं कि भाई हमारे जो पीर साहब हैं, हमारे जो बड़े साहब हैं ना, वो हमारे गुनाहों को अपने नामे आमाल में इम्पोर्ट कर लेंगे और हमारे नामे आमाल से गुनाह खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, यानी ये वाला जैसे पीछे समझा चुके हैं, मगफरत की दुआ करना ये शामिल नहीं है इसके अंदर। वो तो करते हैं हमारे पीर, हमारे बुजुर्ग, हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, सब करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा गुनाह अपनी तरफ ले लेना ये कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह की सोच जो है वो हरगिज हरगिज जायज नहीं है। तो फरमाया कि हमारा कुफर दूसरों के नाम अमाल में किसी वजह से दर्ज हो जाएगा और हम बरी हो जाएंगे, फवा इस वजह से कि हम दूसरों के मुतबे हैं, यानी उनकी इतबा करते हैं जिंदगी के अंदर, मुआसरीन के या आबा अकदमीन के, यानी मुआसरीन का मतलब जो कि हमारे असर में यानी हमारे जमाने में जो जो बुजुर्ग हैं हमारे वो, या पुराने बुजुर्गों में से। ठीक है, ख्वा इस वजह से कि दूसरे वादा इस बोझ के उठा लेने का करते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई कहता भी है ना किसी को कि डोंट वरी मैं तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठा लूंगा, उसके कहने से भी कुछ नहीं होता, बिकॉज ये उसके इख्तियार में है ही नहीं। जैसे कि कुछ कुफार कहा करते थे, वल नहमिल खपायाकुम, यानी यानी तहकीक के हम तुम्हारे गुनाहों को उठा लेंगे, ये बास काफिर कहा करते थे, गर्ज ये ना होगा बल्कि तुम्हारा कुफर तुम्हारे जराइम में लिखा जाएगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता, गुनाह तुम करो और नामे अमाल उसका लिखा जाए। हाँ, ये जरूर होगा कि अगर उसके कहने की वजह से तुम गुनाह कर रहे हो तो तुम्हारा गुनाह तुम्हारे नामे अमाल में भी लिखा जाएगा और उसके नामे अमाल में भी लिखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे में ना लिखा जाए और उसके इसमें लिखा जाए, ये नहीं हो सकता। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़्रा, ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर 5 मरतबा ये उसूल याद दिलाया है, 5 मरतबा, 5 मुकामात पर, मुख्तलिफ जगहों पर, सूरह नजम के अंदर आखिर में और इस सूरत के अंदर और उसके अलावा भी यानी मुख्तलिफ सूरतों के अंदर ये उसूल अल्लाह ताला हमें बार बार याद दिलाता है। फिर अपने परवरदिगार की तरफ तुमको लौट कर जाना होगा, सो वो तुम्हारे सब आमाल तुमको जतला देगा और सजा देगा, बस ये गुमान भी गलत है कि उनके आमाल की पेशी का वक्त नहीं आएगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि टाइम पूरा हो गया, चलो जी अब क्योंकि टाइम नहीं रहा तो अब क्या आपके हिसाब किताब करना, चने सारे के सारे जन्नत में ऐसे ही चले जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है। क्या फरमाते हैं कि क्या अल्लाह अपने बंदों पर कब्र में रहमत फरमाएंगे जबकि इंसान बेहद गुनाहगार हो, क्या ये रहमत हशर के दिन ही इंसान को मुयस्सर हो सकेगी? वो जो 99 हिस्से रहमत की बात है ना हदीस मुबारका के अंदर, वो तो यानी मैदान हशर के लिए है, ठीक है ना, एक्सप्लिसिटली, ठीक है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत जो है वो 99 हिस्से जाहिर होगी, इस दुनिया के अंदर तो सिर्फ एक हिस्से जाहिर होती है, ठीक है, लेकिन कब्र के अंदर रहमत का मामला जो आप पूछ रहे हैं कि क्या कब्र में भी अल्लाह ताला बंदों पर रहमत फरमाएंगे यानी उसके गुनाहों को माफ फरमाएंगे, तो कब्र के अंदर जहां तक हमें हदीस से पता चलता है वो ये है कि जो अजाब कब्र ईमान वाले बंदों को अजाब कब्र हो रहा होगा तो वो अजाब कब्र भी जो है ना वो उनके गुनाहों के तस्किए का सबब बन रहा होगा, माफ होने का सबब बन रहा होगा। तो अगर किसी के ऐसे गुनाह हैं कि जो कि अजाब कब्र के जरिए से साफ हो जाते हैं तो फिर उसका अजाब खत्म हो जाएगा और वो फिर अल्लाह की रहमत में आ जाएगा, तो इसी को आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला रहमत फरमाएंगे, ठीक है। या ये कि उसने सदका जारिया इस दुनिया की जिंदगी के अंदर ऐसे किए होंगे कि उस सदका जारिया के नतीजे में जो उसको सवाब कब्र में पहुंच रहा होगा तो उस सवाब के बदले में फिर अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देंगे, तो ये कब्र में रहमत की शक्ल हो गई, ठीक है। जैसे कि एक यानी एक एक एक, एक, एक इंसान ने अपने बच्चे को जो है वो कुरान पढ़ना सिखाया था, ठीक है, यानी या बल्कि क्या एक वाकया, बुजुर्गों के वाकयात होते हैं वैसे तो, कि जब हमारे हजरत ही वाकया अक्सर सुनाते हैं कि जब उस उसके इंतकाल के बाद ना उसके छोटे से बच्चे ने जब कारी साहब के पास जा करके सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के ऊपर अल्लाह ताला ने उसके बाप के तमाम गुनाहों की मगफरत, ठीक है, कि ये कैसे हो सकता है कि इसका बच्चा तो मेरी तारीफ बयान करे और मैं इसको इसके बाप को जो है कब्र के अंदर अजाब, तो ऐसे भी वाकयात होते हैं, इसकी कोई ना कोई तो वजह बनती है कि अल्लाह ताला इस तरीके से किसी के ऊपर रहम फरमाते हैं ना, तो उसका कोई अमल होता है, उसने ऐसे अल्लाह ताला से या तो माफियां मांगी थी या कोई ऐसे सदका जारिया वाले अमाल किए थे अपने बच्चे को मकतब में डालने के लिए वसीयत करके गया था, ठीक है ना, तो अब उसका ये अमल था ना कि जिसकी वजह से उसका बच्चा जो है वो अल्लाह ताला की हम्द सना कर रहा है, तो उसके ऊपर अल्लाह ताला उसके गलतियों से सर पे नजर फरमा लेते हैं। बहरहाल तो आगे फरमाते हैं कि बस ये गुमान भी मत करना कि हमारे कुफर की शायद उसको इत्तला ना हो, जैसा कि हदीसों में है कि बाज लोगों में गुफ्तगू हुई कि मालूम नहीं अल्लाह ताला हमारी बातें सुनता है या नहीं, किसी ने कुछ जवाब दिया, किसी ने कुछ जवाब दिया, जिस पर ये आयत नाजिल हुई, वमा कुंतुम तस्ततिरूना, कि तुम क्या जो जो तुम यानी छुपाने की कोशिश करते हो, सतर पोशी अपने गुनाहों की करने की कोशिश करते हो ना, अल्लाह ताला से सतर पोशी ये तो तुम नहीं कर सकते क्योंकि अय्यशदा, और आगे इसके अंदर क्या था कि एक मिनट की भी रखी हुई थी, तो जो आजा है हाँ, अय्यशदा अलैकुम समअकुम वला अबसारकुम वला जुलूदकुम, कि तुम्हारे तो तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे और तुम्हारी आंख
अच्छा
गवाही देंगी और तुम्हारी खाल तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, तो तुम अल्लाह ताला से कैसे छुपा सकते हो ना अपने अपने गुनाहों को, लेकिन कुछ लोग इस तरह से समझते थे, ठीक है, तो वो छुप छुप करके गुनाह करते थे और रात की तारीकी में घर के अंदर बंद होकर के वो नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते थे और समझते थे कि अल्लाह को खबर नहीं होगी, और मुशरिक आदमी की हालत यह है कि उसको जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब हकीकी को इसी की तरफ रुजू होकर पुकारने लगता है और सब माबूदों को भूल जाता है, ठीक है, जैसे कुरान में और जगहों पर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इनकी कश्ती भंवर में फंसती है और डूबने लगती है ना, तो ये उस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला को खालिस होकर के पुकारते हैं, उस वक्त अपने हुबल और मनात और लात को नहीं पुकार रहे होते, फिर जब अल्लाह ताला उसको अपने पास से नेमत अमन व आसाइश की अता फरमा देता है तो जिस तकलीफ के दफा करने के लिए पहले से खुदा को पुकार रहा था उसको भूल जाता है और गाफिल हो जाता है और खुदा के शरीक बनाने लगता है, जिसका असर अलावा अपने गुमराह होने के ये होता है कि अल्लाह ताला की राह से दूसरों को भी गुमराह करता है। ठीक है, यानी खुदा के साथ जो शरीक करने लगता है ना, तो उसका फिर असर क्या होता है कि ये फिर यानी लियुज़िल्ला, हाँ जो तर्जुमा किया था जिस साजिद ने, जब तर्जुमा आपको करा रहा था तो उस वक्त जो है ना इसका मफहूम बिल्कुल एक्यूरेट बयान नहीं किया था, तो उसकी उससे रुजू करता है याद। तो जैसा कि हजरत ने लिखा है, इसका ये मतलब है कि ताकि, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरों को जो है वो अल्लाह ताला से गुमराह करें, लियुज़िल्ला, ठीक है, ताकि दूसरों को गुमराह करें, अन सबीलिही, अल्लाह के रास्ते से। बहरहाल मफहूमन तो वो बात भी गलत नहीं थी, लेकिन तर्जुमे के एतबार से गलती थी उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि सब माबूदों को भूल जाता है, फिर जब अल्लाह ताला उसको अपने पास से नेमत आसाइश फरमा देते हैं, तो जिस तकलीफ की दफा करने के लिए पहले इस खुदा को पुकार रहा था उसको भूल जाता है और गाफिल हो जाता है और खुदा के शरीक बनाने लगता है, जिसका असर अलावा अपने गुमराह होने के ये होता है कि अल्लाह ताला की राह से दूसरों को भी गुमराह करता है। और अगर इस मुसीबत को पेश नजर रखे तो तौहीद में इखलास को कायम रखता, यानी अपने जो मुश्किल हालात है ना, तो उन मुश्किल हालात को भूल नहीं जाना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए, ठीक है, चाहे उसके लिए हमें कुछ इंतजाम ही क्यों ना करना पड़े। जैसे एक बहुत अच्छा वाकया, बल्कि हिकायत है हमारे हमारे आबाओ अजदाद से, कि सबने सुना होगा कि एक बादशाह महमूद था, महमूद गजनवी, और उसका गुलाम था अयास, ठीक है। ये एक लड़का था, बहुत जहीन था, तो ये बादशाह के दरबार में जब आया ना, तो बादशाह ने इसकी जहानत को पहचान लिया और इसकी वजह से बादशाह ने इसको अपने बहुत करीब कर लिया। अब जो है ना, ये दूसरे जो दरबारी थे, जो बड़े अरसे से बादशाह के साथ थे और बड़े खानदानी किस्म के लोग थे, तो वो इससे जलना शुरू हो गए, हसद करना शुरू हो गए कि ये बादशाह कितना करीब हो गया, हालांकि ये तो कोई खानदानी भी नहीं है और ये तो ऐसे ही एकदम आ गया था और ये एकदम से कैसे बादशाह का मुकर्रब बन गया, तो बहुत जलते थे। तो अब वो किसी ना किसी तरह से कोशिश करते रहते थे कि बादशाह की निगाहों में ना अयाज जो है वो मशकूक बन जाए, खराब हो जाए अयाज किसी तरह से। तो एक दफा ना उन्होंने बादशाह के सामने, महमूद के सामने शिकायत लगाई कि बादशाह सलामत, ये जो अयाज है ना, आपने इसको इतना करीब कर लिया है, लेकिन ये तो कुछ अजीब गरीब किस्म के काम करता है, हमें तो बड़ा शक है इसके ऊपर कि ये कुछ कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चोरी वोरी का काम करता हो। बादशाह ने कहा, भाई क्या करता है ये? तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ना, इसने अपनी एक अलमारी रखी हुई है और उस अलमारी को ना ये रोजाना जा करके थोड़ी देर के लिए खोल करके देखता है और फिर बंद करके आ जाता है। हमें लगता है कि ये आपके खजाने में से ना चीजें चोरी करके लेके जाता है और उस अलमारी के अंदर रोजाना उन चीजों को रख करके बंद करके आ जाता है। तो बादशाह ने अयास को बुला लिया और अयाज से पूछा कि अयाज, क्या ऐसा ही है कि तुमने कोई अलमारी रखी है जिसको तुम रोजाना खोल करके देखते हो? तो अयाज ने कहा, हाँ बादशाह सलामत ऐसा ही है। तो बादशाह ने उसको हुक्म दिया, अयाज तुम फौरन जाओ और उस अलमारी में से सब कुछ उठा करके लेकर आओ और अपने साथ, उसके साथ जो है वो कुछ अपने बंदे भी भेज दिए ताकि कोई छुपाओ पा ना सके वो। तो जब अयाज बंदों के साथ गया ना, बादशाह के गार्ड्स के साथ, तो अलमारी खोला तो अलमारी के अंदर जो चीजें थी वो लेकर के आ गया। अब बादशाह के सामने वो चीजें उसने रखी तो बादशाह क्या देखता है कि उसके अंदर तो फटे पुराने जूते थे और कपड़े थे और चंद ऐसी जो है ना वो बहुत ही खराब खस्ता हाल किस्म की चीजें थी। तो बादशाह भी हैरान और सारे दरबारी भी हैरान कि ये क्या चीजें हैं भाई। तो बादशाह ने अयाज से पूछा कि अयाज, तुम इन चीजों को रोजाना जा करके देखते हो, ये क्या चीजें हैं? तो अयाज ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, दरअसल बात यह है कि जब मैं आपके पास आया था ना, तो मैं इन्हीं फटे पुराने कपड़ों के अंदर मेरे जूते यही थे, मेरे कपड़े यही थे और यही मेरी चंद इस्तेमाल की चीजें। अब जब मैं आपके पास आ गया हूं और आपने मुझे अपने दरबार में अपने करीब कर लिया है, तो अब आपने मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए हैं, अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, अच्छे खाने को मिलता है, अच्छे इस्तेमाल की चीजें मेरे पास, तो मुझे इस बात का हर वक्त खतरा रहता है कि कहीं मैं अपने माजी को ना भूल जाऊं और मैं आपकी दी हुई इन नेमतों की वजह से ना अपने आप के बारे में कुछ गलत फहमी में मुबतला ना हो जाऊं। तो इस वजह से मैं रोजाना अपनी उन पुरानी चीजों को जाकर के देखता हूं कि देखो अयाज, तुम्हारी हकीकत तो ये थी, ये तो बादशाह का तुम्हारे ऊपर इनाम हुआ
कि जो तुम आज सुकून की और आसाइश की जिंदगी गुजार रहे हो, ये तो सब बादशाह का दिया हुआ है। कहीं तुम बादशाह के नाफरमान ना बन जाना, कहीं तुम बादशाह की नाशुक्री करना ना शुरू हो जाना, कहीं तुम अपने आप को कुछ समझना ना शुरू हो जाना। तो मैं रोजाना अपने आप को याद दिलाता हूं अपने उस पुराने वक्त की चीजों को देख कर। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब हम मुसीबत के वक्त में थे ना, हमारे पास ये नेमतें नहीं थी, ये इज्जतें नहीं थी, ये माल दौलत नहीं था, ये सारी चीजें, औलाद नहीं थी, दुनिया में अल्लाह ताला की कैसी कैसी नेमतें जो कि हमारे पास हैं, बहुतों से ज्यादा बेहतर हैं हम। कितने हैं कि जिनके पास सर छुपाने को घर नहीं, छत नहीं उनके ऊपर, जिनके घर के अंदर रोजाना 3 वक्त का खाना नहीं होता। हम तो 3 वक्त क्या, हम तो 30 वक्त खाते हैं, जब दिल चाहता है कुछ खा लेते हैं, जो दिल चाहता है कहीं ना कहीं से आ ही जाता है हमारे पास खाने के लिए, सवारी के लिए भी कुछ ना कुछ मौजूद होता ही है हमारे पास। तो ये जो नेमतें हैं, ये तो हमारे परवरदिगार की दी हुई नेमतें, तो हमें उस वक्त को हर वक्त याद रखना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से ना अपने आप को दुआओं में याद करवाते रहना चाहिए। इसको एहतसाब करना भी कहते हैं, अपना एहतसाब करना, ठीक है। तो ये जो अपनी मुसीबत के वक्त को भूल जाना है, ये तो काफिर का तर्ज अमल होता है। फिर वही तर्ज अमल जो है वो उसको फिर अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने के ऊपर उकसाता है, और इससे फिर वो अल्लाह के रास्ते से गुमराह हो जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त अपनी बंदगी के लिए कबूल रखे, और कभी भी अपनी बंदगी से हटा करके गंदगी वाले जिंदगी के अंदर हमें रद्द ना फरमा दे। यहाँ पर हम अपनी क्लास को आज खत्म करते हैं, और दस दुआ के साथ फिर इस क्लास का खत्म करते हैं। दुआ के लिए सुभान रब्बिल वहाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اے کریم مقام تیرے آج مسکین بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اے اللہ ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا۔ اے اللہ جو ہم تیرے قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ اس علم کو ہمارے لیے علم نافع بنا، اے اللہ اس کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ اس کو ہمارے سینوں میں اتار فرما، اے اللہ اس کو ہمارے دلوں کے اندر جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو اس علم کی روشنی میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی حفاظت کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں قرآن کے احکام کی حفاظت کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا، اے اللہ ہمیں عامل قرآن بنا، اے اللہ ہمیں ناشر قرآن بنا، اے اللہ ہمیں قرآن کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو ہمارے اہل و عیال کے حق قبول فرما، ہماری آل و اولاد کے حق قبول فرما، اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کے حق قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا، اے اللہ اس کو ہمارے حق میں ہمارے لیے خیر فرما بنا۔ اے اللہ اس میں سے کسی کو بھی ہمارے خلاف بطور حجت کے قیامت کے دن استعمال نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اخلاص کی حفاظت فرما۔ اے اللہ باقی ماندہ رمضان المبارک کے اندر بھی اے اللہ اس درس قرآن کے سلسلے کو خیر کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سے زیادہ اپنے بندوں کو نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو غلطی کوتاہی ہو گئی اس کو ہم سے قبول، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ جو بھی خیر ہوئی آپ کی توفیق سے ہوئی، آپ کی مرضی سے ہوئی، اے اللہ اس خیر کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ رات کے آخری پہر کے اندر تہجد کی مناجات کی لذت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تراویوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری تلاوتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں
ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کی دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ اپنے مشائخ کی اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں میں شامل فرما. اے اللہ اپنے والدین کی دعائیں حاصل کرنے والا بنا. اے اللہ غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.